कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय रा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। बोलिए सब जोर से बोलिए कुंज बिहारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन नंदन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरावन चारी जमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाखया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामय्यं तदातीस्ववदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त बृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैता चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जयो जयो श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैता चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जयो जयो श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैता चंद्र जयो गौर भक्त वृंद। श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। जगन्नाथ मिश्रा फेस्टिवल की जय। होली महोत्सव की जय। हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम सभी भक्तों का यहाँ पर श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी जी के मंदिर के प्रांगण में आपका स्वागत है। विशेष रूप से जो यहाँ पर अतिथि आए हैं और विशेष रूप के जो यहाँ के भक्त हैं जो यहाँ पर इस इको विलेज में सेवा कर रहे हैं तो सबका हम स्वागत करते हैं। तो कल यहाँ पर हमने बहुत ही एक विशेष कार्यक्रम यानी कि फेस्टिवल एक महोत्सव मनाया और इस महोत्सव का नाम क्या था? गौर पूर्णिमा। हम भारत में अधिकांश लोग को गुरु पूर्णिमा मालूम है, इस दिन गुरु की उपासना करते हैं, गुरु को स्मरण करते हैं। गौर पूर्णिमा क्या है? गौर पूर्णिमा वो दिन है जहां भगवान श्री कृष्ण साक्षात एक भक्त के रूप में अवतरण लेते हैं, तो उनका नाम है गौरांगा, इसके लिए उनको कहते हैं गौर पूर्णिमा। क्योंकि कल पूर्णिमा थी, अभी भी आपको कुछ दिखेगा, तो पूर्णिमा के दिन जो गौरांग महाप्रभु का जो आविर्भाव दिन था उसके उपलक्ष पर पूरे विश्व भर में जितने भी गौड़ीय वैष्णव हैं इस्कॉन के भक्त हैं वो ये बहुत ही बड़ा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको मनाते हैं। यहाँ पे जैसे आपने दर्शन लिए होंगे श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी जी के, जो है राधा और कृष्ण। अधिकांश जो लोग यहाँ पर आते हैं उनके मन में ये संदेह होता है कि राधा कृष्ण मालूम है, ये बगल में व्यक्ति खड़े वो कौन है, ऐसे हाथ उठाए तो कौन है वो? वही व्यक्ति है जिनके बारे में आज हम बोलने का प्रयास करेंगे। तो कल के दिन उनका अवतीर्ण हुआ, उनका आविर्भाव हुआ। तो इसके लिए जिस प्रकार से हम जन्माष्टमी मनाते हैं, कृष्ण भगवान का जन्म, कृष्ण भगवान का अवतीर्ण मनाते हैं, उसी प्रकार से गौरांग महाप्रभु का अवतरण हम मनाते हैं। तो पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल में ये लीला हुई है वास्तविक में आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व, जहां पर साक्षात नवदीप मायापुर धाम में भगवान चैतन्य महाप्रभु उनका जन्म होता है। तो बहुत ही बड़ी कहानी है और कल जो भक्तों ने बहुत ही विस्तार में उसके बारे में चर्चा की होगी, लेकिन आपको संक्षेप में बता दूं कि एक बहुत ही विशेष भक्त थे, उनका नाम था अद्वैत आचार्य। तो ये अद्वैत आचार्य जो थे वो उस जगह नवदीप मायापुर की परिस्थिति देखकर उनको ऐसे लगता था कि यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही भौतिकवादी हो गए हैं और उनको अगर कृष्ण भक्ति प्रदान करनी है तो केवल भगवान कृष्ण को अगर अवतरण लेंगे तो ही उनका उद्धार होगा। तो इसी हेतु से वो शालिग्राम जी की उपासना करने लगते हैं और बड़ी तीव्रता से भगवान का नाम लेते हैं और बड़ी तीव्रता से भगवान की प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना करते करते हैं गौर पूर्णिमा के दिन यानी कि कल के दिन भगवान का जन्म होता है शाम के संध्याकालीन समय पर। और उस दिन उस समय चंद्र ग्रहण था, हालांकि कल भी चंद्र ग्रहण था लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उसका इफेक्ट भारत में नहीं था, इसके लिए बहुत अधिकांश लोग को मालूम नहीं था। लेकिन उस समय जब ही साक्षात चैतन्य महाप्रभु उनका जब ही प्रकट हुआ था तो संध्याकालीन समय था और उस समय क्योंकि चंद्र ग्रहण था लाखों लाखों लोग गंगा जी के तट पर आकर भगवान का नाम ले रहे थे। सब लोग बोल रहे थे हरी 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 हरी। कुछ लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे थे, कुछ लोग हरी हरी बोल रहे थे, कुछ लोग गोविंद बोल रहे थे। इस प्रकार से हर व्यक्ति भगवान का नाम ले रहा था, यहां तक कि जो भक्त नहीं है, जो अभक्त है, जो दूसरे धर्म वाले हैं, वो लोग भी हरी हरी की गूंज सुन के वो भी हरी हरी गाने लग गए। तो हर कोई व्यक्ति अचंभित हो गया कि ऐसा कैसा हो सकता है, मतलब इस्कॉन डिवोटी या कोई वैष्णव भगवान का नाम ले रहा है लेकिन जो व्यक्ति ने कभी जिंदगी में हरि का नाम नहीं लिया वो भी हरी हरी कर रहा है, तो कुछ तो दिव्य हो रहा है, कुछ तो दिव्य हो रहा है। और ऐसे सुनते सुनते उनको सुनने में आता है कि एक बहुत विद्वान पंडित है जिनका नाम है जगन्नाथ मिश्रा और उनकी पत्नी है, उनका नाम है सची माता। और उनके प्रांगण में उनके घर में एक पुत्र प्राप्ति हुई है। और क्योंकि उस समय आजकल आजकल किसी का जन्म होता है तो अस्पताल में एडमिट हुआ जाता है और फिर डिलीवरी होती है, उस समय गांव में कर किया जाता है। और जिस जगह पर मतलब भगवान का डिलीवरी हुई थी एक पेड़ के नीचे वहां पे उन्होंने वो एक पर ऐसा हुआ था, तो उस स्थान पर भगवान का जन्म हुआ था। और वो पेड़ कौन सा था? नीम का। और क्योंकि नीम के पेड़ के नीचे उनका जन्म हुआ तो सबने कहा निमाए। तो इस प्रकार से भगवान का एक नाम पड़ गया निमाए। तो उस दिन यानी कि कल के दिन भगवान का जन्म हुआ। तो गौर पूर्णिमा का कल हमने बहुत ही भव्य उत्सव मनाया, गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का हमने अभिषेक किया और फिर कथा हुआ, कीर्तन हुआ और महाआरती हुई। तो फिर आज का कार्यक्रम क्या है, ये जगन्नाथ मिश्रा फेस्टिवल क्या है? जिस प्रकार से जन्माष्टमी में भगवान कृष्ण का जन्म होता है और जन्म होने के पश्चात वसुदेव जी उनको कहां लेके जाते हैं? नंद महाराज और यशोदा के घर। और फिर नंद महाराज और यशोदा को पता चलता है कि इतने सालों से हम जिसके लिए प्रार्थना कर रहे थे वो प्रकट हुए हैं और उस सुंदर बालक को देखकर उनके हृदय में जो खुशी है वो हजार गुना बढ़ जाती है और वो खुशी सबको बांटना चाहते हैं और सबको आमंत्रण देते हैं कि सब लोग आइए हमारे घर आइए और हमारे इस सुंदर बालक को आशीर्वाद दीजिए। और उस फेस्टिवल को हम लोग कहते हैं नंदोत्सव, जहां पर सब लोग आते हैं भगवान श्री कृष्ण का दर्शन लेते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, उनके सुंदर रूप को देखने आते हैं। तो उसी प्रकार से गौरांग महाप्रभु यानी कि निमाय जी जो भगवान है साक्षात एक भक्त रूप में जो अवतार लेते हैं उनका दर्शन लेने के लिए सभी को बुलाया जाता है। और जगन्नाथ मिश्रा और सची माता उनके परिवार वाले और सभी जो भक्त है अद्वैत आचार्य हरिदास ठाकुर जो भगवान के निकट के पार्षद है वो सभी लोग आते हैं और भगवान को देखने आते। तो इस प्रकार से ये जगन्नाथ मिश्रा फेस्टिवल का मूड है। तो श्रील चैतन्य भागवत सबको मालूम है, जैसे भगवत गीता मालूम है, भगवान कृष्ण के उपदेश। श्रीमद् भागवतम क्या है? भगवान कृष्ण की अलग अलग लीलाएं, भगवान कृष्ण के अलग अलग अवतार। और चैतन्य चरितामृत क्या है? चैतन्य महाप्रभु की अलग अलग लीलाएं। तो चैतन्य चरितामृत लिखा है श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, और चैतन्य भागवत जो उसने लिखा है वो है श्रील वृंदावन दास ठाकुर। तो चैतन्य भागवत में भगवान की अधिकांश बाल्य लीला का वर्णन है, और चैतन्य चरितामृत में भगवान की जब युवा अवस्था में, जब भगवान संन्यास लेते हैं, भगवान नवदीप में रहते हैं, उस सब लीलाओं का वर्णन है। तो आज हम अधिकांश चैतन्य भागवत से चर्चा करेंगे, क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर ने बड़ी सुंदरता से भगवान की अलग अलग लीलाओं को मधुरता से वर्णन किया है। तो जैसे कि हमने बताया कि ये चैतन्य भागवत के आदि लीला के तीसरे अध्याय में चर्चा होती है कि किस प्रकार से भगवान का जन्म हुआ, और जन्म के पश्चात लोग गंगा के तट पर आए, भगवान का हरि नाम हरि कीर्तन करने लगे, और इस प्रकार से लोग भगवान का नाम ले रहे थे। जब ये भगवान का नाम ले रहे थे तभी अद्वैत आचार्य जो प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान प्रकट हो प्रकट हो, जब ये अद्वैत आचार्य ने ये महोत्सव देखा, ये वातावरण देखा, तो चैतन्य चरितामृत में ये सुंदर श्लोक आता है। तो इस श्लोक में ऐसा कहा जाता है, नदिया उदय गिरी पूर्ण चंद्र गौर हरि कृपा करी होइ लो उदय, पाप तम होइला नाश त्रिजगतेर उल्लास जगत भरी हरि ध्वनि हाय। तो ये सुनकर अद्वैत आचार्य और हरिदास ठाकुर कहने लगे कि देखो क्या हो रहा है, तीनों जगत में हरि हरि बोल रहे हैं, तीनों जगत में हरि नाम का उल्लास हो रहा है, लगता है भगवान प्रकट हुए हैं। और यही हरि हरि ध्वनि सुनकर क्या होगा, लोगों के पाप से लोग मुक्त हो जाएंगे। और फिर तत्पश्चात जब सची माता और जगन्नाथ मिश्रा जो निमाय पंडित के माता पिता है, उन्होंने भगवान के दर्शन किए, और फिर उन्होंने अपने परिवार वालों को बुलाया, और फिर अब उनके परिवार वालों आके, उनके मित्र अलग अलग भक्त लोग आकर भगवान को देख रहे, तो ऐसा कहा जाता है कि जो स्त्रियां हैं जैसे ही वो बालक निमाय को देखती हैं तो उलू ध्वनि करती हैं। अभी आपको बंबई में जो लोग रहते हैं इतना नहीं मालूम होगा, जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा प्रांत से हैं उनको उलू ध्वनि मालूम है। कितने लोग को मालूम है, कितने लोग करके दिखाएंगे? माताएं अगर आप मायापुर में जाए तो जैसे ही दर्शन खुलता है तो लोग बोलते हैं तो इसको उलू ध्वनि है। ऐसा कहा जाता है कि ये एक प्रकार का ऑस्पिशियस साउंड वाइब्रेशन है, जैसे भगवान के पट खुलते हैं तो कैसे शंख बजाते हैं, तो हर व्यक्ति के पास शंख नहीं होता तो लोग माताएं उलू ध्वनि करते हैं। तो जैसे ही उन्होंने निमाय को देखा तो उलू ध्वनि करने लग गए। फिर जो भगवान के जो अलग अलग क्या बोलते हैं, माता जी के साइड से जो उनके लोग आए थे, पिताजी के साइड से लोग आए, तो भगवान की सुंदरता देखकर एक दूसरे को बोलने लगे कि कितने सुंदर है, कितने कितने आकर्षक है ये भगवान, क्योंकि साक्षात कृष्ण है। कृष्ण मतलब सर्वाकर्षक। फिर आते हैं सची माता के पिताजी, उनका नाम था नीलंबर चक्रवर्ती, और उस समय के वो सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। एस्ट्रोलॉजर को हिंदी में क्या कहते हैं, भविष्य ज्योतिष, ज्योतिष थे। तो जैसे ही हमारी संस्कृति में हम देखते हैं कि किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो लोग हॉरोस्कोप देखते हैं, तो उन्हें हॉरोस्कोप देख के एकदम अचंभित हो गए कि ऐसा कैसा हो सकता है कि एक व्यक्ति, एक बालक का ऐसा, इतने अच्छे अच्छे इनके गुण। तो इस प्रकार से वो कहने लगे, फिर वो कहने लगे कि मैंने सुना था कि बंगाल में किसी ब्राह्मण परिवार में एक राजा का जन्म होगा, तो ऐसा लग रहा है कि ये वही है, क्योंकि जगन्नाथ मिश्रा एक ब्राह्मण थे और इस ब्राह्मण में एक राजा जैसा एक बेटा जन्म होगा, तो ये साक्षात वही है। फिर उन्होंने अलग अलग एस्ट्रोलॉजिकल यानी कि ज्योतिष प्रेडिक्शन किए। कहा जाता है कि इनकी बुद्धि इतनी होगी कि बृहस्पति जैसे हो जाएंगे, इनकी मेमोरी इतनी शार्प होगी, ये इतने बड़े पंडित बनेंगे, और आगे जाके निमाई पंडित बनते हैं। चैतन्य चरितामृत में और चैतन्य भागवत में वर्णन आता है कि किस प्रकार से वो संस्कृत में निपुण थे और किस प्रकार से अलग अलग श्लोकों का उच्चारण करते थे, और ऐसी अलग अलग कथाएं आगे आती हैं। और फिर अलग अलग लोगों ने कहा, तो वहां पे एक अलग ब्राह्मण थे, उन ब्राह्मण ने कहा कि इस बच्चे को, इस बालक को देख के ऐसा प्रतीत होता है कि ये साक्षात नारायण है। तो ये ऐसा कहा गया। फिर किसी ने कहा, अरे इनका जन्म ही किसी कारण हुआ है, पूरे ब्रह्मांड का उद्धार होने के लिए, पूरे ब्रह्मांड में हरिनाम का प्रचार होने के लिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में हरि का प्रचार हो रहा है। यहां पर ऐसा कहा जाता है कि इनमें ऐसे गुण हैं जो ब्रह्मा शिवा शुकदेव गोस्वामी में भी नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि ये साक्षात नारायण है, इतने महान है। और फिर कहने लगे कि इनको देखकर जो जिसका हृदय भी पत्थर का हो, उसके हृदय में भी करुणा आ जाएगी। इसके लिए करुणा मूर्ति कहा जाता है चैतन्य महाप्रभु को। हमारे एक आचार्य लोचनदास ठाकुर ने कहा है, परम करुणा पाहु दुई जान निताई गौर चंद्र, परम करुणा पाहु दुई जन निताई गौरचंद्र, ये करुणा की शिरोमणि है। और फिर इस प्रकार से अलग अलग भविष्यवाणी होती है, और ये सब बताने लगते हैं अलग अलग लोग, अलग अलग बताते हैं। और फिर तत्पश्चात किसी ने कहा कि क्योंकि ये व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड का भरम पोषण करेंगे, इसके लिए इनका नाम रखेंगे विश्वंभर। बोलो विश्वंभर भगवान की जय। फिर किसी ने कहा कि ये नवदीप में इनका जन्म हुआ है, और नवदीप में जो चंद्र है उस चंद्र से भी ज्यादा सुंदर है, तो इनका नाम हो गया नवदीप चंद्र। चैतन्य महाप्रभु का और एक नाम है मायापुर चंद्र। तो इस प्रकार से अलग 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 नाम हुए। जैसे भगवान कृष्ण के अलग अलग लीलाएं तो अलग अलग नाम, उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु यानी कि निमाई पंडित यानी कि गौरांग महाप्रभु, उनके अलग अलग नाम। तो इस प्रकार से अलग अलग लोग आए, उन्होंने भगवान निमाई को देखा और उन्होंने को आशीर्वाद दिया। और देखने के पश्चात जगन्नाथ मिश्रा ने बहुत बड़ा फीस्ट यानी कि बहुत बड़ा क्या बोलते इसको, भोजन की व्यवस्था की थी। बहुत अनेक अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए थे, और उसी फेस्टिवल को नाम पड़ गया जगन्नाथ मिश्रा फेस्टिवल। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का जो एक भक्त के रूप में है अवतार लेते हैं निमाय पंडित यानी कि निमाय, उनका जन्म होता है। हाँ, तो साक्षात भगवान प्रकट हुए। रूप गोस्वामी कहते हैं, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरित्विषे नमः। वो कहते हैं नमो महावदन्याय, कि इनसे बड़ा दयालु व्यक्ति, इनसे महावदन्य कोई व्यक्ति है ही नहीं इस ब्रह्मांड में। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाला व्यक्ति कोई है, वो कौन है? चैतन्य महाप्रभु। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, वही कृष्ण जो है कृष्ण चैतन्य है। नामिने गौरत्विषे, उनका नाम क्या है? गौरत्विषे नमः। तो इस प्रकार से भगवान का जन्म हुआ, और जैसे भगवान कृष्ण ने बाल लीला की तो निमाय भी करेंगे। तो फिर निमाय जैसे छोटे बालक थे, तो जैसे छोटे बच्चे रहते क्या करते हैं? हाँ, खेलने के पहले क्या करते हैं? सबसे पहला कार्य क्या करते हैं? सब लोग भूल गए, आप लोग क्या करते थे? सबसे पहला कार्य जब भी हमारा जन्म हुआ, हाँ भूल गए आप लोग। अगर गलती से कोई बच्चा नहीं रोता है तो उसको रुलाया जाता है।
तो यहाँ पर निमाय पंडित रोने लगते थे, यानी कि भगवान चैतन्य महाप्रभु जो बालक को अवस्था में थे वो रोने लगते हैं। तो जैसे ही रोने लगते तो कोई तो आता है, बच्चे को उठाता है, अरे मत रो, शांत कराने का प्रयास करता है, लेकिन और ज्यादा रोते थे। तो फिर और दो तीन स्त्रियां आ जाती थी, घर वाले आ जाते थे, सची माता आ जाते थे, फिर भी रोना कम नहीं करते थे। फिर किसी ने कहा, अरे अभी कम कैसे करे? तो फिर किसी ने बोला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे मंत्र खत्म हुआ रोना बंद। तो सबने कहा, अरे ये तो अचंभे वाली बात है, अभी जोर जोर से रोए थे, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र लिया बंद। फिर कुछ दिन के बाद वापस रोए तो किसी ने कहा, अरे रुको महामंत्र चालू करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इस प्रकार से सबको पता चल गया कि निमाय पंडित को, मतलब निमाय को अगर रुक आना है, अगर उनको रोते हुए रुकाना है तो महामंत्र करना है। तो जैसे कि आगे किसी ब्राह्मण ने कहा था कि ये पूरे विश्व भर में संकीर्तन आंदोलन को ये जन्म देंगे और संकीर्तन को पूरे विश्व भर में बढ़ाएंगे। तो ये उन्होंने जन्म से ही दिखाया कि किस प्रकार से उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र लोगों को लिया। फिर थोड़े बड़े हुए तो अभी निमाय रेंगने लगे। कितने लोग को याद है, आप लोग बचपन में रेंगते थे धीरे धीरे, ऐसा कोई खिलौने से खेलता था, फिर बाद में माता आके उठा के गोद में लेके जाती थी। तो यहां पर निमाय पंडित यानी कि निमाय रेंगने लगे। फिर रेंगते रेंगते अपने घर के बाहर, आप में से कितने लोग मायापुर गए हैं और कितने लोग चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान में गए हैं योगपीठ, और वहां पर चैतन्य महाप्रभु का जो घर है तो उसी प्रांगण में निमाय रेंग रहे हैं। तो अभी रेंगते रेंगते क्या हो गया, उस दिन प्रांगण में एक बड़ा काला जहरीला सांप था। तो अभी हम गोवर्धन इको विलेज में या कहां पे भी हम जाते हैं और रास्ते पे गलती से सांप दिख जाते हैं, हम क्या करते हैं, अरे अरे यार सांप है, डर जाते हैं, दूर जाते हैं, वो रास्ता चेंज कर देते, सावधानी परखते। लेकिन यहां पर निमाय क्या किए, वो सांप को देखकर उसके पीछे पीछे गए, पूंछ से पकड़ के खींचने लगे। कितने लोग कैसा करेंगे, तो खींचने लगे, सांप बोल रहा अरे छोड़ो। तो फिर अभी क्या करे, तो इतना बड़ा सांप था वो, खींचते खींचते उसने क्या किया, उस छोटे बालक निमाय के पूरे शरीर को ऐसा कवर करने लगे जैसे अनंत शेष करते हैं ना। और फिर इतना ही नहीं, निमाय सो गए और वो साक्षात सांप कोई साधारण सांप नहीं था, अनंत शेष। तो अनंत शेष के रूप में भगवान को आनंद दे रहे थे। तो अनंत शेष को भी, उनको लग रहा था कि यार भगवान मेरी सेवा नहीं ले रहे, तो वो आ जाते हैं और यहां पर भगवान आनंद से अनंत शेष के ऊपर शयन करने लगे। और तभी सच्ची माता और बाकियों ने देखा, अरे क्या हो रहा है, केवल सांप नहीं, सांप ने तो पूरा जकड़ लिया है। और किसी भी क्षण सांप जो होता है अपने फन निकाल कर डस सकता है। अभी सोचिए यहां पर माताएं हैं, पिताजी बैठे हैं, कभी सोचिए आपका बालक खेल रहा है और खेलते खेलते सांप देख लिया आपने तो कितना आप चिंतित हो जाएंगे। यहां पर सांप ने देखा नहीं है, पूरा जकड़ लिया है, और ये लोग दूर से देख रहे, करे तो क्या करे, पास आए तो सांप डर के मारे डस लेगा, अगर धीरे धीरे आए तो उनको डर लग रहा है, तो करे तो क्या कर रहे। तो सब लोग चिल्लाने लगे, लेकिन चिल्लाने से कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो स्त्रियों ने जोर जोर से चिल्लाने लगा, गरुड़ा गरुड़ा, बोलो, क्योंकि गरुड़ जी आएंगे तो सांप भाग जाएगा। तो उन्होंने सोचा इससे कुछ हो जाएगा, लेकिन अभी वो अनंत शेष थे। तो सब लोग जोर जोर से रोने लग गए, जैसे भगवान श्री कृष्ण जब भी कालिया से लड़ने गए तो मैया यशोदा और सभी गोपियों का क्या हाल हो गया था। सब लोग रो रो के परेशान हो गए और मैया यशोदा बेहोश हो गई कि अभी क्या होगा। तो सब लोग रोने लगे, तो अनंत शेष को लगा कि यार मैं तो यहाँ पे सेवा करने आया था, लेकिन इतने सारे भक्तों को मैं दुख दे रहा हूं तो लगता है मुझको निकलना चाहिए, तो धीरे 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 निकल जाते हैं, और जैसे ही निकल जाते तो निमाय यहां भी छोड़ते नहीं, वापस पूछ पकड़ते, लेकिन अनंत शेष जी थोड़े निकल जाते हैं, और तभी तुरंत सची माता आके उनको पकड़ के ले जाती है, और फिर भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान आपकी कृपा से आज कुछ नहीं हुआ, नहीं तो कुछ भी हो सकता था, और फिर गंगा जल से उनको अभिषेक करते हैं और प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत ही अद्भुत लीला वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में कहते हैं। और इस कथा सुनने की फलश्रुति जानना चाहते हो आप लोग? आप लोग ने अगर ध्यान से सुना हो तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति ने अगर पूरे श्रद्धा से इस कथा को सुना है तो सांप रूपी जन्म मृत्यु के इस चक्कर से आप मुक्त हो जाओगे। बोलो हरि बोल, श्री गौरांग महाप्रभु की। फिर कुछ दिन के बाद भगवान निमाय रेंगते रेंगते अभी चलने लगते हैं, तो अभी चलने लगते हैं, तो एक दिन चलते चलते भगवान कृष्ण नटखट लीलाएं करते थे, कभी नृत्य करते थे, हाँ कभी एक दूसरे को देखकर हंसते थे। तो क्योंकि भगवान सर्व आकर्षक है तो भगवान को देखकर सभी लोग आकर्षित हो जाते हैं। तो कभी कभी जैसे भगवान कृष्ण ने अपनी बाल्य लीला में एक लीला की थी, एक फल वाले के पास गए और कहा मुझको फल दे दो, तो उसी प्रकार से भगवान निमाय बालक रूप में थे, घर के बाहर गए तो एक फल वाला था और उसको देखकर निमाय ने उसको एक मुस्कुराहट दी, तो जैसे वो मुस्कुराए तो उसको देखकर, जैसे आप देखते ना एक सुंदर बालक आता है आपके पास और एकदम मंद उसकी मुस्कान होती है, उसको देखकर एकदम आप भाव विभोर हो जाते हैं और कहते हैं बेटा क्या चाहिए, तो निमाय कहते हैं केला दे दो या कोई अगर संदेश रहता तो संदेश दे दो। तो हंसते हंसते भगवान ले लेते थे और फिर घर जाते थे, कभी नृत्य करते थे। तो इस प्रकार से भगवान अलग 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 लीलाएं करते थे। तो एक दिन क्या हो गया, भगवान चलते चलते घर के बाहर चले गए, प्रांगण में चले गए, और सची माता ने उनको बड़े सुंदर आभूषणों से उनको सजाया था, गले में माला डाली थी, सुवर्ण आभूषण डाले थे, हाथ में बाजूबंद था, कान में कुंडल था, और इस प्रकार से सुंदर वर्णन आता है। और निमाय खेलते खेलते बाहर खेल रहे थे और माताएं अपने घर में अलग अलग कार्यों में व्यस्त थी। तो इस प्रकार से माताएं भूल गई कि चलो बाहर होगा, खेलते खेलते वापस आ जाएगा। तो बहुत समय हो गया, आए नहीं आए नहीं। तो तभी दो चोर थे, तो दो चोर ने इस बालक को देखा, बालक सुंदर तो है लेकिन सुंदर से ज्यादा आभूषण, बहुत क्या बोलते इसको, अच्छा माल दिख रहा है, बोलते ना इतना महंगा सोना, कीमती सोना। तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे को थोड़ा मिठाई देते हैं और गोद में खिला खिला के थोड़ा कोने में लेके जाते हैं और फिर चुपचाप निकाल के बच्चे को छोड़ देंगे, क्योंकि बच्चे को पता भी नहीं चलेगा। तो दोनों चोर आए और निमाय को बोले अरे कितना सुंदर बालक है, आ जाओ बेटा आ जाओ, आपको उठाते हैं, आ जाओ हमारे कंधे पे बैठोगे, गोद में बैठोगे। तो निमाय भी खुश हो गया, चलो बचपन में सभी को अच्छा लगता है गोदी में ले लो। तो निमाय भी बोले चलो ऊपर से अच्छा व्यू मिलेगा। तो दोनों कंधे पे बिठाते हैं और ये उनका ऐसा नहीं कि पहली बार कर रहे थे, प्रोफेशनल चोर थे वो लोग, रोज का काम था उनका। तो उनको मालूम था बच्चे को उठाना है, सुनसान जगह पे अपने अड्डे पे लेके जाना है, अपना काम करना है और निकल जाना है। तो अब ये निमाय को लेकर हंसते खेलते गुनगुनाते, बेटा और खाओगे, बेटा और कुछ चाहिए, ऐसा करते 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 निमाय को लेके जा रहे हैं। और निमाय को लेके जाकर उनको लगा कि हम उनके एक फेवरेट जगह पर आ गए जहां पर कोई नहीं है, लेकिन भगवान की योग माया का प्रकोप ऐसा था कि वो एग्जैक्टली उनको उनके घर के बाहर छोड़ देते। तो अभी घर के बाहर जैसे उन्होंने रखा तो निमाय पंडित के जो निमाय के जो माता पिता है, सची माता और सभी जो सखियां, सभी माताएं, जगतनाथ मिश्रा एक घंटे से ढूंढ रहे हैं कि निमाय कहाँ है, निमाय कहाँ है, निमाय कहाँ है, और देखा अरे ये दो सज्जन छोड़ के गए। तो जैसे ही देखा बच्चे को झपट लिए, रोने लग गए, अरे बेटा कहाँ गए थे, कहाँ गए थे। तो निमाय ने क्या कहा, ये दोनों ने मुझको बहुत अच्छे से गोदी में लेके पूरे नवदीप के दर्शन करवाए और इतने अच्छे थे कि घर तक छोड़ के गए। तो अभी वो चोर थे, उनकी चोरी पकड़ी नहीं जाए तो हंसे के रोए समझे नहीं, और वो अभी भी कंफ्यूज थे कि हम इधर आए कैसे। तो निमाय पंडित बहुत खुश थे। वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में लिखते हैं कि क्योंकि उन्होंने भगवान को इतना आनंद दिया, भगवान हृदय से इतने प्रसन्न हुए उनके। फिर सची माता उनको अंदर लेके गई तो उनको लगा कि इन दो भले इंसानों को कुछ तो देना चाहिए, तो अंदर जाके कुछ तो गिफ्ट लेने गए। तब तक ये लोग बोले इसके पहले उनको हमारा सही चेहरा पता चले भाग जाते, तो वो लोग चले जाते। लेकिन चैतन्य महाप्रभु यानी कि जो निमाय, उनको इतना आनंद आया तो, और उस आनंद के वजह से उनके हृदय में एक परिवर्तन हुआ और बहुत ही जल्द उनको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हुई। और वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि बहुत ही जल्द वो शुद्ध भक्त बन गए और उन्होंने अपना जीवन भगवान के लिए समर्पित किया। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। तो इस प्रकार से अनेक अनेक लीलाएं वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं। और एक जगह पर ऐसा एक श्लोक आता है, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं जैसे चार वेद होते हैं, सोचिए अगर वेद 1 करोड़ होते और उसके वेदों में हर एक वेद के 1-1 करोड़ मुंह होते, फिर भी वो सची माता और जगन्नाथ मिश्रा का गुणगान नहीं कर पाएंगे कि इनका क्या सौभाग्य है कि निमाय उनके घर में जन्म है लिए हैं और उनके घर में इस प्रकार से अद्भुत लीलाएं कर रहे हैं। तो ये उनका अद्भुत सौभाग्य है। फिर इस प्रकार से अलग अलग लीलाएं होती है। फिर एक दिन बहुत ही अद्भुत लीला होती है कि एक दिन जगन्नाथ मिश्रा के घर पर एक ब्राह्मण आते हैं। तो ये ब्राह्मण वृंदावन से आते हैं, कहां पर आते हैं, नवदीप में आते हैं। और नवदीप में गंगा मई में दर्शन करके, उनके में स्नान कर, अभी आप लोग को मालूम होगा जो साधु है पहले केवल यात्रा करते थे और कहीं पे एक जगह मिल जाती थी वहां पर वो विश्राम करते थे, किसी के घर पर विश्राम करते थे। तो ये साधु जो थे, एक ब्राह्मण जो थे, वहां पर आते हैं और आने के बाद जगन्नाथ मिश्रा को कहते कि मैं वृंदावन से आया हूं। तो तुरंत जगन्नाथ मिश्रा उनके चरणों में पड़ते कि आज हमारा भाग्य खुल गया कि आप जैसे ब्राह्मण हमारे घर आए, आइए आइए। और उनके पास भगवान का एक बहुत ही अद्भुत विग्रह था, गोपाल जी का। और उस गोपाल जी के वो विग्रह की सेवा करते थे, पूजा करते थे, अर्चना करते थे। तो उन्होंने कहा कि आप आइए हमारे घर पे विश्राम कीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं तो विश्राम कर लूंगा लेकिन मेरे जो ठाकुर जी हैं, मेरे जो गोपाल जी हैं, उनको भोग लगाना है और मेरा ऐसा स्टैंडर्ड है कि मैं खुद ही भोग लगाता हूं, खुद ही कुकिंग करता हूं और खुद ही भोग लगाता हूं, और तत्पश्चात जो प्रसाद है, जो महाप्रसाद है, वो ही ग्रहण करता हूं और कुछ अन्यथा नहीं खाता। तो जगन्नाथ मिश्रा ने कहा ये तो हमारे और सौभाग्य है, आइए हमारे किचन में, आपके लिए हमने सब अरेंजमेंट किया है, आप आइए। सब कुछ उनको, उनको जो भी सामग्री थी उनको लाके दिया, उनको किचन का सेटअप दिया, चूल्हा दिया और कहा कि आपको जो मदद चाहिए बताइए। तो उन्होंने कहा नहीं 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 मैं कर लूंगा। तो उन्होंने अलग अलग पकवान बनाने का प्रयास किया और अंत में वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि बंगाली लोग का सबसे इंपॉर्टेंट आइटम बनाया। अभी आप में से लोग बोलेंगे कौन सा, बहुत लोग बोलेंगे रसगुल्ला, संदेश, ये तो है, लेकिन उससे भी ज्यादा आइटम इंपॉर्टेंट है, वो है राइस, भात। तो उन्होंने सब आइटम बनाया और राइस भी बनाया और सब कुछ मेहनत से, इतने प्रेम से उन्होंने वो आइटम बनाया। अभी बनाने के बाद भोग लगाने का समय हुआ। भगवान की कृपा से और भक्तों की कृपा से मुझको भी कुकिंग करने का सौभाग्य मिलता है। तो कुकिंग करना, उसका प्लानिंग करना, उसके पहले प्री प्रोसेसिंग करना कितना बड़ा कार्य होता है, उसके बाद 3-4 घंटे के बाद कुकिंग हो जाने के बाद फिर हम भगवान को भोग लगाते हैं। तो कितना परिश्रम किया होगा उन्होंने, और वृंदावन से आए हो, थके हुए होंगे, शाम हो गई थी, तो सब कुछ हो गया, भोग लगाए, आंख बंद करके घंटी बजा रहे और पूरे हृदय से गोपाल को बोल रहे आप मेरी ये सेवा स्वीकार कीजिए। और जैसे आंख खोली तो निमाए और राइस को खा रहे हैं। तभी आप लोग जो भगवान की सेवा करते हैं मालूम है कि जब तक भोग भगवान ने अर्पण करने के बाद स्वीकार नहीं किया, एटलीस्ट 5-10 मिनट या 15 मिनट के बाद ही हम उसको लेते हैं, बराबर है। लेकिन यहां पर जैसे उन्होंने आंख खोले ये बालक खा रहा है, और जैसे उन्होंने देखा, क्योंकि मैंने कहा ना इतनी मेहनत के बाद अगर किसी ने आपके भगवान के खाने के पहले उस बालक ने खा लिया तो थोड़ा दुख तो होता है, और दुख में उन्होंने क्या कहा, हाय हाय, जोर से बोलो हाय हाय। तो जैसे हाय हाय सुना, जगन्नाथ मिश्रा सच्ची माता सब लोग भाग के आए, क्या हो गया? तो बोले ये कौन है ये बालक? तो बोले क्षमा करना, ये तो हमारा पुत्र है निमाए। क्या हुआ? अरे भोग लगाने के पहले ही खा लिया, तो अभी उनकी बोलती बंद हो गई, क्या करे, छोटी मोटी गलती रहती तो बोलते नहीं नहीं क्षमा करना, अभी भोग को वापस बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा अरे इतना अभी मेहनत वापस करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला नहीं 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 आज के दिन मैं क्या करूंगा, फल फल कंदमूल वही भोग लगा दूंगा, रात हो गई है, नहीं नहीं ठीक है गलती नहीं। तो जगन्नाथ मिश्रा को बहुत बुरा लगा कि निमाय की वजह से इतना बड़ा अपराध हो गया। बोले नहीं 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 आप चिंता मत कीजिए, अभी मैं खुद ध्यान रखूंगा कि वापस ये गलती ना होए। वापस वो फ्रेश इंग्रेडिएंट लाके देते हैं, सब सामग्री लाने देते हैं, आप बनाइए वापस, आपके गोपाल को कुछ हम ये नहीं लेंगे, आप बनाइए। तो तुरंत सब सामग्री आ जाती है, निमाय को बोलते हैं कि जाओ, और उसको एक रूम में बंद कर दिया जाता है कि वापस ये गड़बड़ ना हो। और सभी स्त्रियों को बोल दिया जाता है कि देखो भोग बनेगा, भोग ऑफरिंग होने के बाद ही बाहर रहना। तो सब कुछ हो जाता है, लेकिन अभी बाकी लोगों ने क्या कहा, एक बार गलती हो गई, इसको बंद करने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग देख लेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, वापस पूरा भोग बन जाता है, वापस भोग लगाते हैं, आंख खोलते हैं तो वापस हाय हाय। अभी दूसरी बार हो गया, अभी जगन्नाथ मिश्रा ने अपना सर पकड़ लिया कि अभी दो बार तो माफी मांग चुका हूं, अभी तीसरी बार क्या होगा। तो अभी तो हार मान गए कि मतलब कितनी बार माफी मांगे। तो अभी तो उन्होंने भी बोल दिया कि अभी तो कुकिंग इम्पॉसिबल, चांस ही नहीं। तो तभी निमाय के बड़े भाई, उनका नाम था विश्वरूप, तो विश्वरूप उनसे 10 साल बड़े थे। ऐसा कहा जाता है कि विश्वरूप इतने सुंदर थे, इतने अद्भुत उनके दृश्य थे कि उनको देखकर ब्राह्मण जी ने पूछा कि ये बालक कौन है, ये युवा व्यक्ति कौन है, मतलब ये छोटे। तो बोले कि ये मेरा बड़ा बेटा है। तो जगन्नाथ मिश्रा माफी मांग रहे थे तो विश्वरूप आके कहते कि आप चिंता मत कीजिए, आप वापस भोग बनाइए, गोपाल आप ही से स्वीकार करेंगे और इस बार कुछ नहीं होगा। तो अभी विश्वरूप ने बोला है तो उन्होंने बोला कि चलो इसने बोला है तो इन्होंने कहा है तो अभी वापस एक लास्ट चांस ले लेते। लेकिन अभी इस बार जगन्नाथ मिश्रा जी कोई चांस नहीं लेना चाहते, उन्होंने निमाय को कहा कि बेटा आ जाओ, रूम के अंदर डाला, लॉक कर दिया कि भाई इस बार कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो विश्वरूप के कहने पर वापस पूरा कुकिंग किया, पूरा कर लिया। लेकिन ये बार क्या हुआ कि इस कहानी में और एक व्यक्ति की एंट्री हो जाती है, किसी को मालूम है, निद्रा देवी की। तो भगवान ने क्या किया, निद्रा देवी को बुलाया, सब लोग को सुला दिया, केवल 2 लोग थे, जैसे भागवतम क्लास में होता है ना, निद्रा देवी आ जाती है और भक्तों को नींद सोना नहीं है, लेकिन क्या करें नींद आ जाती है, निद्रा देवी की शक्ति है। जैसे इस्कॉन में एक जोक कहा जाता है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते तो लोग को नींद आ जाती है, और जैसे महाप्रसाद गोविंद है तो नींद चली जाती है। तो अभी क्या हुआ, निद्रा देवी आ गई और सब लोग सो गए, और निमाय का दरवाजा भी खुल गया। और यहाँ पे उनका ऑफरिंग भी रेडी हो गया. सेम घंटी बजाए, अभी तो उनको पूरा कॉन्फिडेंस था कि इस बार कुछ गलती नहीं होगी. और जैसे ही खोला, आंखें खोली, तो वापस निमय आके राइस खा रहे, सब कुछ खा रहे. अभी तो रो के परेशान हो गए, जोर से बोले हाय हाय. अभी तो बोले कि अभी क्या करूं मैं. तो अभी निमाए अब तक कुछ नहीं बोले. अभी पहली बार बोले कि अरे आप दुखी क्यों हो रहे हो, आप ही तो मुझको बुला रहे हो, अभी खाने आए तो आप ही दुखी हो रहे हो. तो बोले क्या. तो अभी उन्होंने अपना एक्चुअल जो गोपाल रूप है वो उनको दर्शन दिया. जनरली कृष्ण जो वृंदावन के गोपाल है उनका रूप कैसा है, दो हाथ का. लेकिन यहां पर इस ब्राह्मण को उन्होंने आठ हाथ का दर्शन दिया जो रूप है, एट हैंडेड फॉर्म. उसमें चार थे चतुर्भुज, दो भगवान कृष्ण फ्लूट यानी कि मुरली बजा रहे हैं और एक में है मक्खन और दूसरे हाथ से मक्खन खा रहे हैं. तो इस प्रकार से ये अद्भुत दर्शन दिया और वो दर्शन देख के वो मूर्छित हो गए, भाव विभोर हो गए और प्रार्थना करने लगे कि मेरी कितनी बड़ी गलती हो गई, मैं आप ही को बुला रहा था और आप ही खा रहे थे, वे गुस्सा हो रहा था, मैं अपने प्रभु को ही पहचान नहीं पाया, गलती हो गई, क्षमा करो क्षमा करो. और ये केवल दो लोग हैं, बाकी लोग तो निद्रा अवस्था में हैं. फिर भगवान कहते कि आप मेरे नित्य पार्षद हैं, आप वृंदा आप गोकुल में माहवन में जब एक बार आपने ऑफरिंग किया था तभी भी मैं प्रकट हुआ था, मैं वही गोपाल हूँ. और आज आज यहाँ पर आप नवदीप में मेरे धाम में आए हैं, मुझे बहुत आनंद हुआ तो मैंने सोचा आपको मैं दर्शन दूँ, तो इसके लिए ये मेरा दर्शन है. और इस रूप में निमाय के रूप में मैंने अवतरण लिया है और आगे मैं पूरे नवदीप में और पूरे विश्व में संकीर्तन का प्रचार करूँगा. तो आपसे एक ही निवेदन है, जो आपने यहाँ पर देखा किसी को मत कहना. तो उन्होंने वरदान दिया, ये वरदान क्या था, जो आपने मेरा रूप देखा उसको आप आजीवन देखते रहो, लेकिन ये जो आज हुआ 1-to-1 ये आप किसी को मत कहना. तो इस प्रकार से अभी तो वो निमाय जो थे वो एक्चुअल अपने रूप में वापस अपने निमाय के रूप में आ गए. अभी जो उन्होंने दर्शन दिया उनको विश्वास नहीं हो रहा कि जो मेरे बाल गोपाल है वो साक्षात प्रकट हुए और उसने साक्षात भोग लिया. तो अभी तो भोग तो हो गया, अभी वो सोच नहीं रख रहे कि क्या करे, तो चावल खाने लगे, भोग खाने लगे क्योंकि उन्होंने भी खाया नहीं था, केवल खाने ले लगे और राइस को अपने चेहरे पे, अपने अंग पे, अपने पूरे अलग अलग शरीर के अंगों पे वो ये करने लगे और जोर से चिल्लाने लगे गोपाल गोपाल गोविंद गोविंद. तो अभी सबकी नींद उड़ गई और जगन्नाथ मिश्रा सोचने लगे कि अभी क्या हुआ, अभी तो लॉक किया था तो देखा कि निमाय सो रहे हैं, तो अभी प्रॉब्लम क्या हो गया. तो अभी जैसे ही आए तो देखा ये गोपाल गोपाल और इतना एक्सटेसी में चले गए, इतने भाव में चले गए कि वो मूर्छित हो गए. और जैसे उन्होंने ब्राह्मण को कहा कि अरे गोपाल क्या हुआ क्या हुआ, तो बोले कुछ नहीं, ये बार भोग सक्सेसफुल हुआ, बहुत अच्छा हो गया, थैंक यू वेरी मच, रात बहुत हो गई है, प्रसाद लेके सो जाते. तो लेकिन ये क्या हुआ, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनको भगवान ने कहा था. तो इस प्रकार से ये लीला हुई. और वृंदावन दास ठाकुर इस लीला में कहते कि जो भी व्यक्ति इस कथा को पूरी श्रद्धा से सुनेंगे एक दिन वो कृष्ण को समक्ष खुद अपने आंख से देख पाएंगे. रीवो श्री बाल गोपाल भगवान की, निमाय पंडित की जय. तो इस प्रकार से उन्होंने ये अद्भुत लीलाएं की. फिर एक दिन क्या हुआ, अभी निमाय थोड़े बड़े हुए, एक दिन निमाय जोर जोर से रोने लग गए. अभी उनको मालूम था रोते हैं तो क्या बोलने का, जोर से बोलने का, हरे राम हरे राम. तो उनको मालूम है कि अगर भगवान रोते हैं तो महामंत्र बोलने का, लेकिन इस बार भगवान और रो रहे हैं. तो उनको लगा अरे ये फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है, तो वापस उन्होंने महामंत्र जोर से बोला, वापस रोने लग गए. फिर कभी कभी ऐसा माताएं करते ना कि कभी बच्चा इतना रोता है तो डर जाते कि अरे इतना ज्यादा रोएगा कि कुछ हो ना जाए, तो तो सच्ची माता आने लग गई, सब लोग आके एकदम भयित हो गए कि अभी क्या होगा, अभी क्या होगा। फिर निमाई ने खुद कहा कि अगर आप मेरे प्राण बचाना चाहते हैं तो जो मैं बोल रहा हूं वो करो। तो बोला क्या? बोला आज एकादशी है और पासी में यहां पर हिरण्य और जगदीश पंडित का घर है और उनके घर पे शालिग्राम को उन्होंने आज बहुत ही बढ़िया फीस्ट बनाया है और ये बढ़िया भोग लगाया है, आप उनके घर पे जाओ और वो भोग लेके आओ। सोचो कल गौर पूर्णिमा का फेस्टिवल था, महाआरती में इतने सारे भोग लगे थे और कोई छोटा बालक रोता है और मम्मी बोलती है क्या हुआ, वो भोग लेके आओ अभी चाहिए, जब तक वो सब का सब भोग नहीं आएगा मैं नहीं रोना नहीं रुकेगा, तो लोग क्या समझेंगे। और उसमें भी बड़ी बात क्या थी, उस दिन एकादशी था और जनरली डिवोटी लोग जो थे एकादशी में ज्यादा करके एकादशी का भोग लगाते हैं ताकि वही वो ग्रहण कर पाए। तो उन्होंने कहा कि अरे जगदीश और हिरण्य पंडित इतने बड़े भक्त हैं और वो जगन्नाथ मिश्रा के काफी निकट के मित्र थे, तो जगन्नाथ मिश्रा कहने लगे अरे आज एकादशी है, कोई चांस ही नहीं कि वो मतलब नॉन एकादशी वाला आइटम बनाए। तो निमाय कह रहे कि नहीं नहीं बनाया है आप जाओ। तो बोले इतना कॉन्फिडेंस, तो गए तो जैसे गए तो वहां पे भोगा लग रहा था और उन्होंने देखा अपने आंखों से कि एक भी एकादशी आइटम नहीं था। तो उन्होंने अभी उनको जगन्नाथ मिश्रा को लगा कि मैं किस मुंह से बोलूं कि ये जो भोग आपने बनाया है वो हमारे निमाई को चाहिए। तो उन्होंने जब ये सुना तो उन्हें वो चकित हो गए कि कैसे एक बालक को पता चला कि आज हमारे यहाँ पे ये बन रहा है, जरूर साक्षात नारायण उस बालक के रूप में प्रकट हुए हैं और वो नारायण उस बालक के रूप में आज वो आस्वादन करना चाहते। तो उन्होंने जो भी वो पूरा भोग था उनको दिया और निमाए जो छोटे बालक थे सभी आइटम को थोड़ा 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 चख कर आनंद लिया और फिर कहा कि आप भी खाइए, और इस प्रकार से ये लीला हुई। और फिर अलग अलग लीलाएं हैं लेकिन समय कम है, तो एक अंत में एक लीला मैं कहना चाहता हूँ जो मुझको बहुत ही होप गिविंग लगती है और बहुत ही विशेष लगती है, विशेष करके हमारे जैसे जो व्यक्ति है पतित लोगों के लिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पतितों के उद्धार के लिए हाँ हम लोग चैतन्य महाप्रभु आए हैं। हम लोग कहते हैं, एक सुंदर भजन है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, मोसामा पतिता प्रभु ना पाइबे यार। तो इस भजन में कहा जाता है कि हमसे कोई पतित व्यक्ति को अगर उद्धार करना है तो केवल श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु। तो जब निमाय जो थे छोटे थे तो अभी बच्चों के साथ खेलने लग गए, तो एक दिन खेलते खेलते गंगा के तट पे क्या हुआ, एक कुत्ते ने छोटे छोटे बच्चों को जन्म दिया और उसमें से एक छोटा जो बच्चा था बहुत ही अद्भुत सुंदर था। तो निमाय ने क्या किया, उस छोटे बच्चे को ले लिया और बोला कि ये मेरा, तुम बाकी सब ले लो। तो बाकी जो मित्रों ने कहा कि सबसे सुंदर आपने लिया और बाकी वाला हमारे लिए छोड़ दिया, ये अच्छा नहीं है। तो बोला नहीं नहीं नहीं, आप भी खेलो हम भी खेले सब साथ में खेलेंगे। तो निमाय उसके साथ खेलने लगे, उसको खिलाने लगे, इतना आकर्षित हो गया कि उसको गंगा से अपने घर पे लेके आए। और जैसे घर पे आए और वो सच्ची माता को कहा कि माता आज देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूं, तो उनको लगा गंगा जल लाए होंगे या कुछ तो लाए होंगे। तो देखा छोटा कुत्ता का बच्चा, तो उनको लगा कि अरे घर के अंदर क्यों लाए, क्योंकि बहुत जगह पे ऐसा होता है ब्राह्मणों के घर पे वो लोग बोलते कि नहीं नहीं उनको रखो हम बाहर भोजन देंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं अभी आप आए स्नान कर लो आपको भोजन देते हैं। फिर दूसरे दिन तीसरे दिन इस प्रकार से ऐसा कहा जाता है कि वो खाना पीना भूल गए, रोज उनके साथ खेलते थे। तो सच्ची माता ने कहा कि अरे कुछ तो करना पड़ेगा। फिर एक दिन उन्होंने कहा कि आज आप भोजन लीजिए कि मैं इनका ध्यान रखती हूँ, और उन्होंने उनको एक जगह पर बांध दिया था। फिर उन्होंने कहा कि नहीं 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 मैं बाद में खा लूंगा, नहीं 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 आप खा लो फिर ये कर देंगे। तो जब तक वो खा लेते हैं, फिर उन्होंने देखा कि ये ठीक है, तो फिर वो जाते हैं कि जाओ गंगा स्नान करके आओ। तो जब भी निमाय गंगा के लिए जाते हैं तो सच्ची माता क्या करते हैं, उस छोटे से जो कुत्ते के बच्चे को छोड़ देते हैं। तो जैसे छोड़ देते हैं वो चला जाता है। तो सभी निमाय के जो मित्र हैं उन्होंने कहा कि सुना क्या हुआ, जिस छोटे कुत्ते के बच्चे से तुम इतने आसक्त थे, तुम्हारी माता ने उसको छोड़ दिया। तो घर आके बहुत क्रोधित हो जाते हैं कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा। तो बोले, तो सच्ची माता भी सोचती कि अरे क्या हुआ क्या हुआ, क्या करे। तो ने कहा कि आप प्रसाद ले लो, मैं उसको ढूंढती हूँ। तो तब तक वो प्रसाद लेते हैं और सब ढूंढने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं। तो तभी नवदीप वासी एक जगह पर आते हैं, वहां पर जो कुत्ता है वो छोटा पपी इंग्लिश में बोलते हैं, वो उस बीच चौराहे पे आकर, जनरली कुत्ता भौंकता है और कुत्ते के भौंक सुनने से हम लोग परेशान हो जाते हैं। बहुत बार यहाँ पर हमको ऐसा अनुभव है, रात को आवाज आता है तो हमको डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन ये जो कुत्ता है वो साधारण कुत्ता नहीं है, उसको निमाय की कृपा मिल गई है। तो कुत्ता क्या बोल रहा है, गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल। ऐसा कोई कुत्ता देखा आपने? तो सब लोग चौंक गए, ऐसा कैसा। और वो कुत्ता चार पैर का अचानक दो पैर पे खड़े होकर नृत्य करने लगा। उसके शरीर के अनगिनत जो बाल है वो खड़े हो गए, भाव विभोर हो गए, रोने लग गए। और निमाय निमाय बोलते बोलते क्या हो गया, वहीं पे मूर्छित हो गया। और तभी निमाय आते हैं और देखते कि सभी के सामने वहां पर गोलोक से एक विमान आता है और उस विमान में उसको बिठाया जाता है और वो गोलोक धाम उसको लेके जाता है। सोचिए सोचिए, अगर हम इस प्रकार से भगवान का नाम ले और भगवान की असीम कृपा हो, तो अगर एक कुत्ते के पिल्ले को यानी कुत्ते के बच्चे को अगर भगवान ऐसी कृपा दे सकते हैं, तो अगर भगवान की इच्छा हुई तो जरूर एक दिन ऐसी कृपा मिले। और श्रील प्रभुपाद जी और जब भी इस्कॉन के जो गुरुवर्ग हैं उनकी कृपा से भगवान की ये जरूर कृपा हो। तो इसी के साथ आज हम जगन्नाथ मिश्रा फेस्टिवल के बारे में आज चर्चा किए। तो हम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि हमको भगवान की असीम कृपा प्रदान करें, और जगन्नाथ मिश्रा और सची माता और भगवान के जो अन्य गण हैं उनकी भी कृपा प्राप्त हो। तो जैसे कि आज जगन्नाथ मिश्रा फेस्टिवल है, उसके बारे में हमने बताया, भगवान की अलग अलग लीलाएं बताई। आज हमारे वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से होली भी है, और मैंने देखा यहाँ पर बहुत भक्तों ने, कुछ बच्चों ने होली भी खेली। तो मुझे यहाँ के फेस्टिवल कमेटी के डिवोटीज ने कहा कि आप होली के बारे में भी बताइए। तो यहाँ पे हमारे गोवर्धन इको विलेज में, अद्भुत गोवर्धन इको विलेज में, यहाँ पे एक वृंदावन फॉरेस्ट हमने बनाया है। परम पूज्य राधानाथ महाराज की असीम कृपा से वृंदावन की प्रतिकृति यहाँ पर निर्माण की गई है। और यहाँ पर वृंदावन के साथ मंदिर है, गोवर्धन है, यमुना है, और वृंदावन के सब मंदिर है। और यहाँ पर बरसाना भी है, नंदगांव भी है। तो मैंने सोचा कि होली के बारे में बताना चाहिए। तो एक 5-10 मिनट लूंगा तो होली के बारे में मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो वास्तविक में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि प्रभु जी ये होली का कार्यक्रम शुरू कैसे हुआ। लोग बोलते कि राधा कृष्ण होली खेलते थे, कहाँ खेलते थे, वास्तविक में सच में कुछ रेफरेंस है क्या? तो मैंने एक पता किया कि हमारे एक आचार्य हैं श्रीनिवास आचार्य। श्रीनिवास आचार्य ने एक ग्रंथ लिखा है भक्ति रत्नाकर, और भक्ति रत्नाकर में एक कथा आती है कि एक बार राधा और कृष्ण गोवर्धन के पास एक स्थान पे जाते हैं, और उस स्थान पे एक जगह पर राधा और कृष्ण बैठते हैं। तो अपना अलग अलग लीलाएं वो कर रहे हैं, और लीला करते करते ललिता देवी आती है कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के जो दुपट्टे को बांध देती है, जैसे शादी में होता है ना गांठ बांधते हैं। तो वो गांठ बांधते हैं और फिर उठने के बाद उनको पता चलता है अरे गांठ बांधा है। फिर सब लोग हंसते हैं और फिर अलग लीलाएं होती है। तो क्योंकि उस जगह पर गांठ बांधा है तो उस जगह का नाम पड़ गया गांथोली। अगर आप लोगों ने ब्रजमंडल परिक्रमा की हो तो गोवर्धन परिक्रमा में एक स्थान आता है गांधोली, जो सनातन गोस्वामी परिक्रमा करते थे 34 किलोमीटर वाली, उस परिक्रमा में यह स्थान आता है गांधोली। 21 किलोमीटर के परिक्रमा में नहीं आता, 34 किलोमीटर के परिक्रमा में आता है गांधोली, सूर्यकुंड और अलग अलग ऐसा स्थान, पेठा गांव ऐसा आता है। तो इस प्रकार से गांधोली नाम पड़ गया। और क्योंकि उस स्थान पर बैठे थे, ऐसा कहा जाता है कुछ गोपियों ने भगवान के ऊपर जल डाला, कलर डाला, अलग अलग प्रकार का रंगीन कलर डाला, और फिर कलर डालने के बाद ये होली का पहला ये लीला हुई और कृष्ण ने गोपियों के साथ और श्रीमती राधा रानी साथ ये लीलाएं की। और लीला करने के बाद उसी स्थान से 1 मील की दूरी पर एक कुंड है, उस कुंड में स्नान किया। और स्नान करने के बाद होता है ना, होली के बाद स्नान करते सब पानी लाल 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 हला हो जाता है, तो लाल पानी होने के बाद उस कुंड का नाम पड़ गया गुलाल कुंड। तो आज भी वो स्थान है गुलाल कुंड। अगर आप कबर गोवर्धन में जाए तो गांधोली के पास वो कुंड है गुलाल कुंड। तो ऐसा कहा जाता है कि वहां पर ये लीला हुई थी। और फिर बहुत जगह पर ब्रज में होली होती है। एक्चुअली जब भी मैं सोच रहा था कि होली के बारे में बोलूँ, राधा कृष्ण के बारे में बोलूँ, तो मुझको लग रहा था कि मेरी तो वास्तविक में कोई योग्यता नहीं है। लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ पर वृंदावन फॉरेस्ट में बरसाना है, नंदगांव है, तो कुछ लीला बोलनी चाहिए। तो विश्वरूप प्रभु की एक कथा सुन रहा था। विश्वरूप प्रभु ब्रज की कथा में, विशेष करके बरसाना की कथा में माहिर है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर हम एक दिन होली खेलते हैं। वृंदावन में कितने दिन होली खेलते हैं, किसी को मालूम है? एक महीना हर रोज। हमारे ब्रजवासी है बोली, सवा महीना, 45 डेज। वसंत पंचमी से शुरू होता है और आज शायद से खत्म होता है। 45 डेज, 45 दिन। वसंत पंचमी कभी था किसको याद है? 14 फरवरी। तो 14 फरवरी से शुरू हो जाता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग होली होती है, ब्रज में अलग अलग स्थान पे होली होती है। इतना डिटेल तो हमको भी नहीं मालूम है, लेकिन बहुत सारे ब्रज के जो लोग हैं वो कहा था, अलग अलग कथाएं होती है भगवान के, अलग अलग लीलाएं हैं, अलग अलग कथाएं हैं। तो विश्वरूप रूप कहते हैं कि बहुत सारी होली होती है, लेकिन जो फाल्गुन के 9वें दिन पे जो होली होती है वो विशेष है। उस होली का नाम है रंगीली होली और वो होती है बरसाना में। तो रंगीली होली की लीला सुनना चाहते हैं? तो एक बार क्या होता है, कि जैसे होली एक फेस्टिवल है। आजकल क्या होता है, होली मतलब इसका कपड़ा खराब करना है। हम लोग बचपन में होली खेलते थे तो हमारा उद्देश्य क्या था कि ऐसा कलर डाले कि इसका ये शर्ट वापस ना पहन पाए। फिर कुछ लोग और कनिष्ठ अधिकारी वो बोलते हैं कि ऐसा गंदा पानी डाले कि मतलब वो शर्म से ये हो जाना चाहिए। तो लेकिन ये होली नहीं है। होली एक दूसरे को आनंद देने का कार्य है, और ब्रज में जो होली होती है वो भी भगवान के आनंद के लिए होती थी। तो ऐसा कहा जाता है कि नंदगांव के जो पंडित है, उस पंडित का नाम था पांडे। तो पांडे जी नंदगांव के जो पंडित थे, वो नंदगांव से बरसाना आते हैं। कीर्तिदा और वृषभानु महाराज और श्रीमती राधा रानी, जो श्री जी मंदिर है अभी, वहां पे राधा रानी को न्योता देने के लिए कि कल रंगीली होली है, आप आइए होली खेलने। तो आमंत्रण देने, मतलब कैसे देखो क्या फेस्टिवल है, इनविटेशन, फिर लोग आएंगे, आमंत्रण। तो अभी पांडे जी आए। अभी ऐसा होता है ना, यहाँ पे होता है कि मालूम नहीं, हम लोग बच्चे थे तो क्या करते थे, टेरेस पे बैठते थे, जो भी चलते फिरते उसके ऊपर गुब्बारे डालते थे, रंग डालते थे। तो वहां के जो गोपियां थी, ऐसा कहा जाता है जैसे पांडे जी को देखा, उनके ऊपर रंग डाल दिया, पानी डाल दिया। तो अभी अनएक्सपेक्टेड होली, तो लोग थोड़े परेशान हो जाते, अरे कपड़े खराब हो जाते। तो जैसे पूरा उनको रंग दिया, श्रीमती राधा रानी को पता चलता है, और श्रीमती राधा रानी भाग के आती है। और श्रीमती राधा रानी भाग के आने के बाद वहां पर तुरंत बोलते, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये तो पुजारी जी हैं नंदगांव के, उनको हम कैसे ये कर सकते हैं। उनको लेके जाती है, अपने महल में बिठाती है, उनके लिए गर्म पानी की व्यवस्था करती है, आप स्नान कर लीजिए, नए वस्त्र की अभी तैयारी करती है, आभूषणों की तैयारी करती है, और सुंदर पकवान होली में अलग अलग मिठाइयाँ बनती हैं, अलग अलग पदार्थ बनते हैं, पूरा एकदम मस्त सेवा करती है। इतना करने के बाद वो जो पांडे जी थे उनको बहुत आनंद होता है, इतना आनंद होता है कि वो बड़े प्रेम से कहते कि आप आइए, जो भी हुआ वो भूल जाते हैं। फिर कीर्तिदा माता आती है, तो कीर्तिदा जो माता आती है वो इतनी खुशी होती है कि नंदगांव से कोई इन्विटेशन देने आए तो इतनी खुशी खुशी में लोग बोलते हैं ना, अरे आप आए इतनी दूर से, कुछ तो खाइए। तो उन्होंने लड्डू बनाए थे, तो लड्डू पूरा लेके आते और एक साथ 5 लड्डू मुंह में डाल देते, ये एक लीजिए खाइए, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं खाइए। तो पूरा लड्डू खा के बोलते कि आइए और कल आप वापस आइए यहाँ पर खेलने के लिए। तो ये रंगीली होली तो होती है, इसके बाद ये दूसरी होली हो गई, उसका नाम हो गया लड्डू मार होली। क्या होली? तो ये होली का स्टार्ट हुआ कीर्तिदा ने, जो कीर्तिदा माता ने 5 लड्डू जो दिया था। तो अभी आज की तारीख में कैसे फेस्टिवल होता है, लड्डू मार, लठ मार बाद में, लड्डू मार। लड्डू मार में क्या होता है, नंदगांव के पुजारी लोग आते हैं श्री जी के मंदिर में, और नीचे से राधा रानी मतलब जो सखियां हैं वो नीचे से उनको एस्कॉर्ट करके ऊपर लेके आती हैं, श्री जी के मंदिर में दर्शन होता है। और अगर आपको लड्डू मार होली मनानी है तो जो भक्तगण हैं खुद लड्डू बनाते हैं हजारों हजारों की संख्या में, श्री जी को भोग लगता है और मंदिर के परिसर में जाते हैं, मंदिर मैनेजमेंट को देते हैं, और मंदिर मैनेजमेंट वो है उस लड्डू को भोग लगाते हैं, और उस लड्डू को भोग लगाने के बाद क्या होता है, नहीं पहले प्रेम से देते थे, फिर वो लोग मतलब कभी कभी आपने देखा भीड़ में पहले प्रसाद ऐसे दिया जाता है फिर बाद में फेंकते हैं ना, ये लो, तो उन्होंने फिर ऐसा चालू किया, फिर इतने सारे लोग आने लगे, फिर वो लोग फेंकने लगे तो लोग कैच करने लगे, तो इस प्रकार से वो लड्डू मार होली हो गया। और फिर वो लड्डू लेते क्या करते, जेब में डालते, तो ऐसे भरते रह गए। तो इस प्रकार से बरसाने वाले जो लोग हैं ऊपर से फेंकते, नंदगांव वाले लोग हैं लड्डू लेते, तो ये हो गया लड्डू मार होली। फिर बाद में आता है लठ मार होली, तो उसकी कथा भी बड़ी है, संक्षेप में बताऊंगा कि एक दिन लठमार होली का एक्चुअल एपिसोड जब होता है कि साक्षात भगवान कृष्ण अपनी गोपियों के साथ, एक्चुअली लठमार होली बाद में नाम पड़ा, तो वो वास्तविक जो होली है उस होली में भगवान नंदगांव से सब गोपियां गोपागण आते हैं, एक विशेष प्रकार का एक पोशाक पहनते हैं। विश्व रूप प्रभु बताते हैं कि जैसे कोई सैनिक होता है ना, आपने देखा है सैनिक किस प्रकार से एक पोशाक पहनता है, बहुत सारी जेब होती है, यहाँ पे ये डाल सकता है, यहाँ पे बुलेट डाल सकता है, यहाँ पे बॉम्ब डाल सकता है, यहाँ पे कुछ इमरजेंसी पानी का बॉटल हो कुछ रखना है, हा? तो उसी प्रकार से कृष्ण और बाकी के जो उनके मित्र मंडल है, अलग अलग प्रकार के, किसी ने रंग डाले हैं, किसी ने पानी डाला है, किसी ने इस प्रकार से अलग अलग चीज लेके आते थे। और फिर वो आ जाते हैं, तो जैसे आते हैं तो श्रीमती राधा रानी को ललिता देवी और कहती है कि अरे कृष्ण आए हैं, तो श्रीमती राणा कहती है कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, तो नहीं नहीं वो नीचे खड़े हैं, तो बोलते हैं नहीं 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 मैं नहीं जाऊंगी, तो बोले एक बार देख तो लो। तो श्री जी के महल से वो जगह है स्थान, और ये लोग खड़े कहाँ हैं, पीली पुकार के पास। तो आज भी ब्रज में ऐसा एक स्थान है पीली पुकार से वो दर्शन दिखता है महल का। तो ऐसा कहा जाता है कि वहां से इतनी दूर से भगवान ने पिचकारी मारी, ऐसा कहा जाता है कि वो पानी नहीं पोड़ा, लेकिन भगवान का जो प्रेम है वो प्रेम से श्रीमती राधा रानी के ऊपर वो ये हुआ और वो भीग गए। और जैसे भीग गए तो श्रीमती राधा रानी कृष्ण को देखकर वो भी आई, फिर सभी गोपियां आए, फिर होली खेलने लगे। तो कभी कभी कोई गेम खेलते हैं तो ऐसा एक रूल होता है कि अगर हम जीते तो ये होगा, हारे तो ये होगा। तो भगवान कृष्ण आते हैं तो बड़े बड़े बक्सों में अलग अलग प्रकार के भेंट लेके आते हैं, खाना पीने का सामान लेके आते हैं, मिठाइयाँ लेके आते हैं, ताकि अगर हम हार गए तो हम इनको ये देंगे, अगर हम जीते तो हम उनसे ले लेंगे। लेकिन विश्वरूप रूप कहते हैं कि ब्रज का मूड ऐसा है कि कृष्ण जो है हमेशा श्रीमती राधा रानी से हारना चाहते हैं, इसके लिए वो पहले से ही लेके आ जाते हैं। तो इस प्रकार से वो लेके आते हैं। फिर उस दिन कुछ ऐसी लीला होती है, तो श्रीमती राधारानी और गोपिया कृष्ण को पकड़ लेते हैं कि आपने ये ठीक नहीं किया, तो अभी आपको हम दंड देंगे। तो कभी कुछ गेम में ऐसा रूल होता है तो दंड का, तो उस समय ऐसा अलग अलग दंड था। एक दंड था कि हमने आपको रंग तो लगा दिया लेकिन अभी हमको काजल लगा देंगे चेहरे पे। तो जनरली काजल गोपियां लगाती थी लेकिन अभी वो कृष्ण को लगाते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग उन्होंने एक काजल लगाते हैं। दूसरा ऐसा एक था कि वो भगवान के हाथ बांध दिए थे, उनके अंग वस्त्र को ले लिया था। तो इस प्रकार से दो तीन ऐसी लीला होती है। तो ऐसी लीला से ये होली होती है, वो जगह है ऐसे। तो आज के दिन लटमार होली कैसी होती है कि जो नंदगांव के जो लोग हैं एकदम हुष्ट पुष्ट लोग आते हैं और एकदम अच्छे पोशाक में आते हैं, विशेष सुसज्जित। और ऐसा नहीं कि होली है मतलब पुराने कपड़े पहन के, ब्रज में कोई भी होली के दिन पुराने कपड़े पहनते नहीं। विश्वरूपरू कह रहे थे कि जो गोपियां जो लठमार जो लठ लेके खड़ी है वो ऐसे सच के आती है, कुछ कुछ उनके मतलब बहुत ही महंगे महंगे आभूषण और वस्त्र पहन के आती है। कभी कभी एक एक उनके ड्रेस 20-20 हजार 50-50 हजार के होते हैं और वो होली खेलने आते हैं। और इस प्रकार से वो उनके हाथ में लठ होता है एकदम ये वाला, और जैसे कोई सोल्जर होता है कुछ होता है तो वो ऐसा ये रहता ना शील्ड रखते हैं, क्या रखते हैं ढाल, तो यहाँ पर वो ढाल लेके आते हैं और ये लोग मारते हैं। और फिर तभी ये लोग चरणों में देखते हैं गोपियों का और मतलब ये आशीर्वाद लेते हैं। और गलती से अगर आपने कभी वो देखा होगा लाइव, बहुत जोर से मारते हैं, थाड़ थाड़ आवाज आता है। तो कभी कभी ऐसा कहा जाता है अगर लग भी जाए तो वहां पे ब्रज रज होती है, कुछ एक प्रकार का विशेष ऐसा रज होता है, तुरंत वो रज लगाया तो आपका वो घाव चला जाता है। कहा जाता है कि उस दिन जिस दिन लटमार होली होती है गवर्नमेंट मतलब इतना इंच का वो लगा के रखती है कि कुछ भी हो डालते जाओ। और इस प्रकार से ये अलग अलग होलियाँ होती है और हर मंदिर में ब्रज में होली होती है, हर दिन महोत्सव है। तो जैसे ब्रह्म संहिता में कहा जाता है श्रिया कांता कांता परम पुरुषा कल्पतु हो, हाँ, कि हर क्षण जो है भगवान की अलग लीलाएं चलती है, हर क्षण महोत्सव है। तो इस प्रकार से भगवान की अलग लीलाएं होती है। तो क्षमा कीजिए अगर मेरी योग्यता से ज़्यादा अगर मैंने कुछ बोल दिया हो, मेरी वास्तविक में कोई योग्यता नहीं, और मैं विशेष करके जो आयोजक है आज के इस फेस्टिवल के उनका धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझको ये सेवा प्रदान की। तो आज के दिन जगन्नाथ मिश्रा के इस कार्यक्रम में और होली के अवसर पर आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर इस कार्यक्रम में आए, आपका विशेष विशेष धन्यवाद। तो जगन्नाथ मिश्रा का फेस्टिवल फीस्ट आप लोग के लिए तैयार है, प्रसाद लीजिए। और इसी प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी असीम कृपाएं हम सब पर रहे और हमारा जीवन परिवर्तन हो। हरे कृष्णा, श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, नवदीप मायापुर धाम की जय, गौरंगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद।
हरे कृष्णा, आइए प्रभु जी को धन्यवाद बोलेंगे तीन बार हरि बोल बोल के।
हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल,
अनंतराव प्रभु की।